संतवाणी में मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य सुना था। एक बार संत महाराज को कुछ तकलीफ थी, दर्द हो रहा था, तो हम लोग सब आसपास जो बैठे थे जरा मन उदास करके कहने लगे, अरे महाराज जी बड़ा दर्द हो रहा है आपको, तो हंस के कहते हैं कि अरे भाई दर्द के बिना भी कोई जीवन है क्या? दर्द के बिना कोई जीवन नहीं है। अरे भाई प्रेमियों का जीवन कैसा होता है? जो स्वभाव से कोमल हृदय के होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, उनका जीवन दर्द से खाली नहीं होता। कभी तो पीड़ित जनों की पीड़ा देखकर परपीड़ा से करुणित होते रहते हैं, तो या तो परपीड़ा उनके भीतर बसी रहती है या प्रेमास्पद से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, या तो विरह की वेदना हो या परपीड़ा की व्यथा हो, व्यथा ही तो जीवन है, दर्द के बिना कोई जीवन है क्या? बड़ा मजा आ गया सुनकर हम लोगों को। उनको तो शारीरिक कष्ट तो था ही, लेकिन उसको कभी प्रधानता देते ही नहीं थे, और छोटी मोटी बातों में भी हम लोग जब कुछ कुछ बातचीत करते रहे तो हमारी नीचे स्तर की बातों का अर्थ भी वो बहुत ऊंचे स्तर से ले जा करके हम लोगों को बता दिया करते थे। हम सुन करके बहुत आनंदित हो गए। मेरा एक बढ़िया बात है, दर्द के बिना कोई जीवन है तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए यह कि शरीरों के साथ संत जन, भक्त जन, उच्च कोटि के महापुरुष संसार में जब विचरण करते हैं तो उनका कोमल चित्त जो है, उनका प्रेम भरा हृदय जो है, वो जगत के दुखियों के दुख से द्रवित होता रहता है। सुख देखकर आनंदित होते हैं और दुखी जन का दुख देखकर वे द्रवित होते हैं। तो दुखियों का दुख अगर हृदय में भर जाए, पीड़ित जनों की पीड़ा हम लोगों को अपनी पीड़ा मालूम होने लगे, तो ये बहुत बड़ी साधना हो जाती है। इस दर्द का पर पीड़ा से पीड़ित हृदय जो होता है उसमें अपने व्यक्तिगत सुख भोग की वासना शेष नहीं रहती। बड़ा भारी उपकार हो गया। अब आप देखिए कितने कितने दिनों तक इंद्रिय दमन का अभ्यास करने के बाद भी यह शंका बनी रहती है कि कहीं दबी हुई कोई वासना उदित न हो जाए और साधना पर से हटा न दे। तो हमेशा के लिए बहुत जोरदार पहरा रखना पड़ता है व्यक्ति को। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम मनुष्य के मस्तिष्क में यह एक विशेष क्रिया देखी गई कि उनके भीतर की दबी हुई बातों को और चेतन स्तर की बातों को चेतन स्तर पर आने से पहले एक सेंसरशिप का फोर्स काम करता रहता है अपने आप, हमारा लगाया हुआ नहीं, प्रकृति का ही। सेंसरिंग अथॉरिटी कौन के भीतर की दबी हुई बात को चेतना में आनी चाहिए और कौन सी बात को कभी नहीं आनी चाहिए, तो इस प्रकार से एक शक्ति मस्तिष्क की काम करती रहती है। और बहुत सी अनुचित बातें जो कि चेतना में आ जाए तो मनुष्य उनको सह नहीं सकता, ऐसी अनुचित बातों को वो शक्ति भीतर ही भीतर दबा करके रखती है, आने नहीं देती है। तो अभ्यास के बल पर जब हम अपने भोग वासनाओं को, उनके वेग को दबाने की कोशिश करते हैं तो दब जाते हैं। और साधक को मौका मिल जाता है आगे निकलने का, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय थोड़ा सा ढीलापन हो तो दबी हुई बातें प्रकट हो सकती हैं, सेंसरशिप थोड़ा शिथिल हो सकता है, कुछ कुछ बाधा पड़ सकती है, परंतु भौतिक जगत का रहने वाला व्यक्ति हो करके शरीरों के साथ संसार में विचरण करता हुआ साधक हो करके इस परपीड़ा के वरदान को अंगीकार करे तो उसको बड़ा लाभ होगा। क्या होता है कि अगर आंखें खुलती ही हैं और जगत को देखे बिना आपसे नहीं रहा जाता है, तो खोज ढूंढ करके दुखियों को देखिए, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगाना पड़ेगा कि बाएं दाएं आगे पीछे अड़ोस में पड़ोस में घर में सब जगह दिखेंगे ही दिखेंगे जी, चारों ओर दिखेंगे। और आग तो बहुत अधिक मात्रा में समाज में, परिवार में, देश में, सब जगह भरे पड़े हैं। कितना दुख हम लोग सुन रहे हैं, देश के किसी हिस्से में कुछ हो रहा है, किसी हिस्से में कुछ हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं राष्ट्र के नाम पर, कहीं वाद के नाम पर, कितना अनर्थ हो रहा है, कितने भाई बहन हमारे दुखी हैं। तो जो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुखियों का दुख अपने दुख के समान अपने हृदय में धारण करने की बात मनुष्यता के नाते स्वीकार कर ली जाए तो भोग वासनाओं का अंत हो जाता है। तो इस दर्द को अपने जीवन में रखना बड़ा उपकारी है। आप देखिए दोनों ही तरह से काम बन गया। अगर समाज की पीड़ा से आप पीड़ित हो गए तो समाज को मदद दिए बिना आप रह नहीं सकेंगे, तो सुखी दुखी की एकता हो जाएगी। आज की दशा कैसी हो गई है, मनुष्य मनुष्यता के लक्षण से अपने को वंचित कर लेता है, तब क्या करता है कि सुखी वर्ग सुख भोगने में लग गया तो प्रकृति में प्रतिक्रिया पैदा हो गई। तो जो अपने को दुखी वर्ग करता है वह सुखियों के संहार में लग गया, तो मालूम होता है कि मनुष्यता कहीं है ही नहीं है, ऐसी दशा हो गई। और किसी न किसी रूप में हमारी इस स्वार्थ बुद्धि ने अनेकों प्रकार की विषमताएं और संघर्ष को पैदा कर दिया है, और मानव समाज आज के युग में छत बिछत हो रहा है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, सब दूसरे दूसरे देशों में भी बड़ी ही दयनीय दशा हो गई है। कोई कोई बाहर के संघर्ष से परेशान है, भयभीत है, तो कोई भीतर के संघर्ष से परेशान है, भयभीत है। तो भय और चिंता और दुख और हिंसा का चारों ओर साम्राज्य छा गया है। इसको मिटाना है, इससे अपने को बचाना है, तो ऐसी दशा में क्या करें हम। लेकिन मेरे दिल में देश के लिए दर्द है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, कहां कहां में ही सबल व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करके दुर्बलों को सता रहा है। ये पीड़ा तो मुझे सताती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से जो हो सकता है तो मैं कर रही हूं, कर रहे हैं, समाज सुधारक भी कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ता है कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। और चारों ओर का दुख हाहाकार देखकर दिल में दर्द तो है। तो यह दर्द जो है यह बहुत ही कल्याणकारी हो जाए अगर इस दर्द के रहते हुए हम सब लोग उसको उसको ठीक प्रकार से देखें और उसके प्रभाव को अपने जीवन पर होने दें, तो सच्ची बात यह है कि कोमल हृदय के व्यक्ति, भावुक हृदय के व्यक्ति कभी भी दर्द से खाली नहीं रहते। दुखी जनों की पीड़ा भीतर प्रवेश कर जाए तो सुख भोगा नहीं जाता। मुझे याद है जवाहरलाल जी जब पहली बार जेल गए थे, मोतीलाल नेहरू घर में थे इलाहाबाद में आनंद भवन में, तो सुख से भरा वह भवन था और उन्होंने सुना कि मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र, आँखों का तारा जवाहर जेल में जमीन पर कंकड़ पर सुलाया गया है। जेल में हुआ ना, ऐसे सुलाया गया। तो मोतीलाल नेहरू से आनंद भवन में सुखदायक सेज पर सोया नहीं गया, तो कहने लगे कि हमारे महल में सोने के कमरे में कंकड़ बिछाओ, मैं उस पर लेट कर देखूंगा मेरा प्यारा पुत्र जेल में किस प्रकार से सो रहा है। ये कल्पना नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, ये इस युग की घटना है। और गृहस्थ और सुख वैभव में जिंदगी बिताने वाले बाप की कथा है, जो बेटे का दर्द समा गया दिल में तो आनंद भवन में सुखद सेज पर सोया नहीं गया। मोतीलाल जी ने कंकड़ बिछवाया अपने बेडरूम में और उस कंकड़ पर सोए, उस पीड़ा को अनुभव करने के लिए कि देखे हमारा लाल जेल में कैसे सोया है। तो सुख की वासना गई कि नहीं गई, इंद्रियों का दमन करना पड़ा कि अपने आप छूट गया, छूट गया ना। तो इस प्रकार की साधना जिससे हृदय में से सुख की वासना निकल जाए, घर गृहस्थी वालों के लिए सुलभ है कि नहीं जी? घरों में, आसपास में, अड़ोसियों पड़ोसियों में दुख देखने को मिलता है, और अगर उधर से आंख न बंद करो, हृदय को कठोर न करो तो सुख भोगा जाएगा। तो इस संसार में जो जो सचमुच जिंदा दिल व्यक्ति हैं, उनका जीवन दर्द से खाली नहीं होता है, बड़ा शुभ है, वो बहुत कल्याणकारी है, बड़ा आनंददायक है। अनेकों गृहस्थों की कहानियां मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ कि जिन्होंने माने हुए संबंध के दुख से द्रवित होकर के सुख भोगना छोड़ दिया तो वे बड़े शांत हो गए, त्यागी हो गए, संत हो गए, मुक्त हो गए, ऐसे हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जीवन में सुख के प्रलोभन में पड़ करके मनुष्यता के सामान्य लक्षणों से भी अपने को वंचित कर लिया है, उसको भी भीतर दबा लिया है, इसलिए स्वभाव से विकास नहीं हो रहा है। एक हिस्सा तो ये हो गया। उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि अरे भाई, चाहे पर पीड़ा से पीड़ित होकर द्रवित होते रहो और चाहे विरह की व्यथा में डूबते रहो, तो प्रेमी जनों के लिए मिलन का आनंद और विरह की व्यथा, तो विरह की व्यथा में मिलन का आनंद और मिलन के आनंद में विरह की व्यथा। और कभी कभी वाक्य सुना देते, मिले रहें पर कबूह मिले ना, वह मिलन भी ऐसा है कि मिलने के बाद हम दो मिल रहे हैं, इस प्रकार का आभास ही नहीं होता। असीम से सीमित का मिलन, अनंत से शांत का मिलन, प्रेमास्पद से प्रेमी का मिलन, ऐसा अनोखा है, ऐसा अनोखा है कि महाराज जी कहते कि देखो भाई, प्रेम की जो विद्या है ना, उसका गणित बड़ा विचित्र है। एक और एक मिलकर दो नहीं होते हैं, एक और एक मिलकर एक ही होता है, बड़ा विचित्र गणित है। ऐसा है, आपने कहीं नहीं सुना होगा, सब जगह के हिसाब में यही सुना होगा कि एक और एक मिलकर दो होते हैं। प्रेम का जो राज्य है उस विद्या में गणित बड़ा विचित्र है, एक और एक मिलकर दो नहीं होते, वो एक और एक मिलकर एक ही रहता है। इतनी एकता जहाँ होती है, स्वरूप की एकता, जातीय एकता, आत्मीय एकता, और मैंने जो अपने को समझाने के लिए एक ढंग अपनाया तो वो इस प्रकार से अपनाया कि जैसे हम लोगों ने देखा है, तो क्या देखा है कि चुंबक है, तो चुंबक के पास अगर कोई लोहे की चीज ले आओ, छोटी से छोटी एक सुई भी ले आओ, तो जल्दी से खींच करके उसको अपने में चिपका लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक आकर्षण शक्ति है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ मुझको प्रभु की कृपालुता से, प्रभु के प्रेम के प्रभाव से आकर्षण, बाहरी नहीं, दुनियावी नहीं, शरीर का नहीं, बुद्धि का नहीं, कल्पना का नहीं, इन सबसे अतीत अलौकिक बीइंग जो है, अलौकिक सत्ता जो है, उसके आकर्षण को जहाँ जहाँ भी अनुभव किया है, मुझे इतना प्रत्यक्ष लगता है, इतना प्रत्यक्ष लगता है कि मुझ में एक एक इकाई में और उस समूह में शक्ति का बड़ा अंतर है। तो वो तो शक्ति का अथाह सागर है, वह तो प्रेम का अथाह सागर है, वह तो अनंत माधुर्यवान है, अथाह सागर है, और उसने अपने में से इतना इतना सा दे करके मुझको बनाया, और मैंने अपनी भूल से उसके दिए हुए अनमोल तत्वों को संसार की आसक्ति से दूषित कर दिया, गंदा कर दिया, धूमिल कर दिया। फिर भी क्योंकि अलौकिक ने अलौकिक तत्व से मुझको रचा, इसलिए मेरे भीतर से वो प्रेम का भाव जो है वो मिटा नहीं, शून्य नहीं हुआ। तो गदला सा, गंदा सा, आसक्ति में लिपटा हुआ, कामनाओं से दूषित हुआ, विकृत हुआ ले करके हम उसके सामने आए। संत ने साहस दिया, डरो मत, कि अनुभवी जनों ने आश्वासन दिया कि चाहे तुमने अपनी जो भी दुर्गति की हो, वे परम उदार सदा ही अपनी उदारता से तुमको क्षमा करने के लिए, अपनी मधुरता से शीतल करने को तैयार हैं। बड़ा आश्वासन दिया गया मुझको, बहुत समझाया गया, तो मैंने ऐसा पाया कि मनुष्य अपनी ओर से अनेक त्रुटियों से भरा हुआ होने पर भी जब उन अनंत परमात्मा, प्रेम स्वरूप परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो उनके भीतर इतना घना आकर्षण है, इतना जोरदार उनकी ओर से खिंचाव है कि व्यक्ति फिर अपने सीमित अहम भाव को सुरक्षित रख नहीं सकता, वो खींच करके अपनी ओर ले लेते हैं, और रस के अभाव में नाशवान संसार में भटकने वाले को जब रस का मधुर आस्वादन मिलने लग जाता है, उस प्रेम रस के प्रवाह में वह डूबने लगता है, तो धीरे धीरे करके उसका सीमित अहम भाव, मैं प्रेमी हूँ ऐसा भासित होने वाला अहम भाव, मैं भगवान का भक्त हूँ ऐसा दिखाई देने वाला अहम भाव जो है, उस अहम भाव की सीमा दूर जाती है और प्रेम स्वरूप की प्रेम विभूति में वो जाकर के शामिल हो जाता है, जिसको वो अलग अपने को अनुभव करता ही नहीं है। तो मिले हुए होने पर भी मुझसे मिलन हो गया ऐसा पता नहीं चलता, और बिछड़े हुए मालूम होने पर भी उनकी याद में, उस विरह की वेदना में, वे स्वयं अपने आप ही रसरूप इतने घुले मिले हुए होते हैं कि उनकी विरह की वेदना भी उतनी रसमय होती है जितना मिलन का आनंद। तो हम कब मिले और कब बिछड़े ये भक्तों को पता ही नहीं चलता है। तो मिले हुए में भी मिलने जैसी सीमा नहीं है और बिछड़े हुए में भी बिछड़े जैसी जैसी वियोग की दशा नहीं है, नहीं रस्ता नहीं है। बड़ा आनंद का जीवन होता है वो। तो महाराज जी कहें कि भाई दो ही दशाएं तो सार्थक हो सकती हैं, अगर जगत पर दृष्टि पड़े, उनके जगत रूप को देखो तो जहाँ जहाँ पीड़ा दिखाई दे उसको अपने लिए ग्रहण करो, पीड़ित के साथ तुम शामिल हो जाओ, उसकी पीड़ा के साथ अपने हृदय को मिलाकर उसकी सेवा करो। तो जगत की ओर देखो तो ये तुम्हारा सार्थक जीवन हो गया। किस प्रकार से सार्थक हो गया कि सबल और निर्बल की एकता हो गई तो समाज का संघर्ष मिट गया। हर सामर्थ्यवान साधक, अल्प सामर्थ्य है तो क्या और विशेष सामर्थ्य है तो क्या, सामर्थ्य को करोगे क्या भाई? मृत्यु के पार कोई सामर्थ्य तुम्हारी जा सकती है तुम्हारे साथ जी? नहीं। सुख भोगने में लगाओगे तो दुख भोगने से बच पाओगे? नहीं। तो मृत्यु के पार वो जाएगी नहीं और सुख भोग में उसका कोई उपयोग नहीं, तो सेवा के अतिरिक्त सामर्थ्य का और क्या उपयोग हो सकता है जी? कुछ नहीं। तो थोड़ी सी सामर्थ्य हो तो अथवा बहुत सी हो तो जगत की ओर प्रीति भरी दृष्टि फैलाइए, अपनेपन की दृष्टि से जगत को देखिए और जहाँ जहाँ दुख दिखाई देता हो प्राप्त सामर्थ्य को बांटते जाइए। तो पीड़ित जनों की पीड़ा आपके हृदय में समा जाएगी तो सुख भोग की वासना सदा के लिए मिट जाएगी। इस प्रकार का साधन करने के लिए गृहस्थ जनों को, सामाजिक जनों को किसी विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी? नहीं पड़ेगी। कोई माँ बहन कोई भाई ऐसा कह सकते हैं कि क्या करूँ, संसार का इतना जंजाल है कि आसन मुद्रा साधने के लिए, इंद्रिय दमन का अभ्यास करने के लिए टाइम ही नहीं है। कोई कह सकता है? कोई नहीं। तो ऐसी साधना करो कि गृहस्थी में रहना तुम्हारे लिए तपस्या का अवसर बन जाए। बड़ी भारी भूल है कि खास समय को हम लोग साधन के लिए मानते हैं और शेष समय को खोजते रहते हैं कि भाई समय मिले तो ऐसा करें, परिस्थिति अनुकूल आवे तो साधन शुरू करें और परिवार का जंजाल ऊपर से उतरे तो साधन शुरू करें। तो नहीं भाई, जिसने परिवार बना के समाज बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है उसने तुम्हारे कल्याण के लिए खड़ा किया है। तो जहाँ जहाँ दुख दिखाई देता है अपना सुख दे करके अधिक से अधिक दुख खरीदो तो हृदय की शुद्धता हो जाए। या तो पर पीड़ा से भरा रहे हृदय, कभी छुट्टी ही न मिले कि उसमें सुख की बात न उदित तो हो, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि जब समाज की सेवा का अवसर निकल जाए, अखंड रूप से कोई सेवा का कार्य तो कर ही नहीं सकता, प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में होगा ही, जरूरी है। क्रियाशीलता का अंत शांति में अवश्य होगा। तो जब क्रियाशीलता का समय निकल जाए, जब परिवार की समाज की क्रियात्मक सेवा करने की घड़ी निकल जाए, अकेले होने का समय आवे, तो वो सेवा का कार्य जो है वो इतनी प्रियता इतनी पवित्रता इतनी आत्मीयता से की गई थी कि जैसे ही उसकी ओर से छूटे तो शरीर और संसार भी छूट गया। इस स्वास्थ्य पथ से साधकों के भीतर अपने प्यारे की याद बड़े जोर से जगती है, तो याद जगी, स्मृति जगी, तो दोनों ही बातें हो जाएंगी। या तो मिलन के आनंद में आप खो जाएंगे या विरह की व्यथा में आप खो जाएंगे। ये सीमित अहम भाव का लोक जो है, सर्वथा लोक, वो प्रेम रस की वृद्धि में ही होता है पूरा का पूरा। अभी हम लोगों का कौन सा पीरियड चल रहा है, किस क्लास के विद्यार्थी हैं हम लोग, तो अभी हम लोगों का यह प्रयास चल रहा है कि भूतकाल की हुई भूलों से हृदय में जड़ता, कठोरता और नीरसता और अनेक प्रकार के विकार जो भर गए थे, अभी इस वर्तमान में हम लोग उन विकारों को मिटाने की चेष्टा में लगे। मोह में फंसे थे तो भाई मोह त्याग की तैयारी कर रहे हैं। सुख भोगों का प्रभाव अंकित हो गया है भीतर, तो उस प्रभाव से मुक्त होने का उपाय कर रहे हैं। परम प्रेमास्पद प्रभु की विस्मृति हो गई थी, तो संत जन के वचनों को सुनकर, गुरु की सलाह मानकर, गीता रामायण पुराण पुराण के वाक्यों की सलाह मान करके अब हम भूले हुए प्रभु को याद रखने की चेष्टा में लगे हुए हैं। ठीक है, यही दशा है ना? तो अभी हम लोगों की ये दशा चल रही है कि भूतकाल की भूलों से जो जो भीतर में अशुद्धियां और दुर्बलताएं पैदा हो गई हैं, उन अशुद्धियों को मिटाने की चेष्टा में हम लगे हुए हैं। तो कोई कोई समाज की एक अंग की सेवा कर रहा है, कोई संत महात्मा की सेवा में लगा हुआ है, कोई प्रभु की याद में लगा हुआ है, कोई कमाई हुई संपत्ति को बांटने में लगा हुआ है, कोई कुछ तरह तरह के विधि विधान के उपायों से हम सब भाई बहन इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मेरे अहम में की हुई भूलों का प्रभाव जो अंकित हो गया है, उससे हम मुक्त हो जाएं। तो अभी ये पीरियड हम लोगों का चल रहा है। अब उसमें जितनी ही तत्परता से आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी मन की चित्त की शुद्धि हो जाएगी। उसमें एक ये खास बात है, दुखी जनों का दुख, दूसरों की पीड़ा में भी अपनी पीड़ा है। किसी दुखी को देखकर उसकी जगह पर अपने को खड़ा करके देख लो कि ये जैसे दुख में है, ऐसे मैं अगर होता तो मुझको कैसा लगता। तो ये दूसरों के दुख को अपने हृदय में धारण करने का तरीका है, अपने को उसकी जगह पर डाल करके अपने को पूछो कि ये बहन जैसे दुख में पड़ी है, इसकी जगह पर मैं होती तो मुझको कैसा लगता। तो एकदम प्रत्यक्ष दर्पण के समान आपके भीतर उसका चित्र अंकित हो जाएगा, चित्रित हो जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन एक बड़ी भारी बात है कि जो मोह के प्रभाव से दुखी होता है, उसके भीतर दुर्बलता आती है, वो नर्वस होता है और उल्टा पुलटा कर बैठता है, और भगवत नाते परपीड़ा को अपने में धारण करता है जब व्यक्ति, तो उसमें दुर्बलता नहीं आती, उसमें नीरसता नहीं आती, उसमें घबराहट बेचैनी नहीं होती, दुखी की मदद करने की सामर्थ्य आती है। प्रकृति भी देती है, परमात्मा भी देते हैं, समाज भी देता है। एक व्यक्ति जरा सा प्रकट करे कि हम समाज की सेवा के लिए व्याकुल हैं, कि हम पीड़ित हैं, मुझको दुखी वर्ग की सेवा करनी है, तो आप देखिए आज भी कलिकाल के प्रभाव से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। इस क्षण में भी सामर्थ्यवान अपनी सामर्थ्य को आपके आगे निथावत करने में देर नहीं लगाते हैं। अगर कोई समाज की सेवा करने के लिए तैयार हो जाए तो इस तरह से चारों ओर से सहयोग भी मिलेगा। उस पीड़ा को आप हृदय में पालिए और जो सामर्थ्य मिले उसी से सेवा करिए। तो ये हो गया दृश्य जगत के साथ साधन रूप व्यवहार, और वहां से हटने के बाद तो आप अपने भीतर अपने आप से ही यह पाएंगे कि अब हमारे भीतर जो नित्य विद्यमान तत्व है, जो रस स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, शांति स्वरूप ही है, उससे अभिन्न होने की सामर्थ्य आप में आ गई। जिस दिन से सुख भोग का दृष्टि, सुख भोग की दृष्टि आपने बदल डाली, उसी दिन से अशुद्धि का नाश आरंभ हो गया। और जिस क्षण से दुखियों की पीड़ा को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया, उसी दिन से सुख भोग की वासनाओं की जड़ कट गई। और जिस दिन से सारे जगत को प्यारे प्रभु का मानकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य किया, उसी दिन से कार्य काल में और कार्य के बाद प्यारे प्रभु की याद निरंतर बनी रहती है। और जब साधक सेवा क्षेत्र से अलग हो करके अकेले जाकर के बैठ जाता है कहीं भी, तो उसके भीतर अलौकिक परमात्मा की विभूतियों का प्राकट्य अपने आप से होता रहता है, उसको भरता रहता है, उसको भरता रहता है। सुनी रस्ता मिटती जाती है, सुनापन मिटता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, रस बढ़ता जाता है। और फिर तो रस की वृद्धि इस प्रकार से जादू करती है कि वो शुद्ध की शुद्ध अहम का जो एक एक द्वैत का भास बना हुआ था कि मेरे परमात्मा है और मैं उनका आराधक हूँ, यह नित्य तत्व है और मैं उसके उसके उसका जिज्ञासु हूँ, इस प्रकार का जो भास अलगाव का बना हुआ था, वो कब और कैसे मिट जाता है तो साधक को पता भी नहीं चलता। बहुत तैयारी की बात नहीं होती है, बड़ी स्वाभाविकता की बात है कि प्रेम तत्व ऐसा अलौकिक तत्व है और ऐसा चमत्कार पूर्ण तत्व है कि पर पीड़ा से पीड़ित हृदय शुभ हुआ नहीं कि वो प्रेम रस से भर जाता है, प्रभु की याद भीतर जगी नहीं कि स्मृति ही प्रीति का रूप धारण कर लेती है। और मिलन का भी कुछ अंत नहीं होता और विरह में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। जैसे 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 विरह की वेदना तीव्र होती है, रस की वृद्धि होती चली जाती है, तो विरही को कोई घाटा नहीं लगता, वो तो उसी को मांगते रहते हैं। एक एक भक्त का वाक्य स्वामी महाराज को एक भक्त सुना रहे थे, मुझे याद आ गया। एक संत मिले थे, बातचीत हो रही थी तो गा रहे थे, तो स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद था, तो कहते थे कि वो गीत गा करके सुनाओ मुझे। तो वो गाते थे, नींद 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 मैं तो है बेचू, भक्ति की बात है ना, वो कहे कि अरे नींद मैं तुमको भेज डालूंगी, क्यों नींद आ जाती है तो विरह की वेदना जो है खत्म नहीं होती है, उसका पता नहीं चलता है। वो विरह भी इतना सरस है भाई, विरह क्या है, वो तो प्रेम के आदान प्रदान का एक पत्नी है, एक मिलन है। और महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं किया करते, कहते कि देखो प्रेम के रस को अनंत रस कहा गया, नित नौ रस कहा गया, हर समय उसमें वृद्धि होनी चाहिए, तो एक रूपता ना आ जाए, इसलिए प्रेमास्पद जो है वो विविध प्रकार की लीलाएं रचते हैं, तो कभी मिलन का प्रसंग आ गया, तो कभी विरह का प्रसंग आ गया, तो हर समय उसमें एक नयापन 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 आता रहता है। तो मनुष्य का जीवन ही क्या जो दर्द से खाली हो जाए, तो उसी बात है सुनकर देखो। और अपने लोगों की दशा क्या है, भागे भागे फिर रहे हैं, सुख की आड़ में मुंह छिपाते फिर रहे हैं, किसी तरह से दुख ले गए तो बच गए हैं, सुख की आड़ में मुंह छिपाता फिरता है, अब ऐसे करो तो दुख न मिले, अब ऐसे करो तो दुख न मिले, अब यहाँ रहो तो दुख से बच जाओ, तो सुख की आड़ में मुंह छुपाने से दुख से हम लोग आज तक बच नहीं सके। इसलिए अगर दुख लेना ही है तो ये नाशवान जगत में रहते हुए भी दुख दिखाई देता ही है तो उसको साधन रूप दे दो। तो साधन रूप देने का अर्थ क्या है कि भाई अपने सुख को बांट दो, तो पीड़ितों की पीड़ा को अपने में ग्रहण करना बहुत बड़ी साधना है। इससे बड़ा कल्याण होता है, बड़ी जल्दी उत्थान होता है। और विरह और मिलन की बात जो है वो तो गंगा जमुना के लहर के समान है। कभी कभी गंगा की लहर जोर मारती है तो जमुना जी की चली जाती है, कभी जमुना की लहर जोर मारती है तो गंगा जी की चली जाती है, और दोनों मिलकर एक भी है और दोनों दो रूप भी दिखाई देते हैं। यही तीन के मिलन का नितनौ रस कहलाता है। कहीं कहीं पर वर्णन पढ़ा है मैंने तो बड़ा ही आनंददायक मालूम होता है, सोचने से सुनने से इतना बढ़िया लगता है। और अनुभवी जनों ने उस अनुभव को अनिवर्तनीय कह करके वर्णन किया है, क्योंकि उसको प्रकट करने के लिए भाषा बनती ही नहीं है। तो ऐसा मैंने सुना कि कृष्ण कन्हैया जब वन से आने लगते ब्रज की ओर शाम के समय, तो सब अपना अपना काम धाम छोड़ करके बच्चे सयाने बुढ़े स्त्री पुरुष सब दरवाजे दरवाजे खड़े हो जाते, कन्हैया आ रहे होंगे। तो इतनी मधुरता और इतना आकर्षण है उनमें, सारे जगत की ओर से सबका चित्त अपनी ओर खींच करके ले लेते। तो कौन काम करे, कोई तवा पर रोटी जाने हुए है तो वहीं छोड़ करके भाग जाती, जल जाता, सूख जाता, कुछ भी हो जाता, परवाह नहीं। कोई बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वहीं उसको बैठा करके भाग जाती, कुछ सब काम धाम छोड़ कर सब लोग लग जाते। और आ रहे हैं दूर से बंसी ध्वनि सुनाई दे रही है। मधुरता जो है बाहर की, वो भीतर में प्रेम की लहरियां उठा रही है। तो जैसे जैसे बंसी की ध्वनि सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी मधुर स्मृति में होते जा रहे हैं। रस बढ़ता जा रहा है, अहम डूबता जा रहा है, प्रीति उमड़ती जा रही है, सीमा टूटती जा रही है। तो अदृश्य रूप से अपने आप में ही विद्यमान उस प्रेमास्पद की मधुर स्मृति में सब खोते जा रहे हैं। तो इंद्रियों से संबंध टूट गया, शरीरों से संबंध टूट गया, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसका भार खत्म हो गया। इसी बीच में वह भुवन मोहन रूप और उसकी माधुरी और उसका सौंदर्य और उसका रस फैलाते हुए सामने से निकल गया। आंखें खुली हैं, अपने को पता नहीं है कि मैंने देखा। जिसको पता है, आंखों से तादात्म्य है तो लगता है कि हम देखा, कि हम देख रहे हैं। और रस की अधिकता में लौकिक तत्वों से संबंध टूट ही गया। तो आंखें खुली है तो खुली है, लेकिन देखने का अपने को भास ही नहीं हुआ। निकलते हुए मटकते हुए और अपनी मधुभरी दृष्टि से प्रेमियों को मोहते हुए चले गए। कुछ देर के बाद जब होश आता है तो कह रहे हैं कि बड़ी देर हो गई, कन्हैया आया नहीं। तो कोई कहता है कि पागल हो क्या, आंखें खोलकर देख रहे थे, तुम्हारे सामने से तो गया, तो तुम कैसे कहते हो कि आया नहीं। तो कोई प्रेमिका अधीर होकर कहती है कि हे सखी मैं क्या बताऊं, इन आंखों ने जब से उनको देखा मुझे छोड़ कर चली गई, है ही नहीं मेरे पास, मुझको पता कैसे चले कि मैंने देखा। तो कोई कहती है कि हाँ याद तो आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं सखी, उनके एक अंग पर दृष्टि पड़ी तो उसी की रस माधुरी में मैं खो गई, तो आज तक मैंने कन्हैया के पूरे स्वरूप को देखा ही नहीं, मुझको पता ही नहीं चला कि वो कैसा है, क्या हो गया। तो द्वैत खत्म हो गया, एक मैं हूँ और एक मेरा प्यारा है। विभाग जो था वो शुद्ध से शुद्ध अहम में भी जब तक ये भाग बना रहता है, तभी तक भक्तों को प्रेमियों को पता चलता है कि मेरे भगवान हैं और मैं भक्त हूँ, मेरे प्यारे हैं और मैं प्रेमी हूँ। और जब उस प्रेम की वृद्धि में ये सीमित अहम की सीमा भी टूट जाती है तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सदा सदा के लिए उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर प्रेमास्पद में जुट कर प्रेम के नित नौ आदान प्रदान में, नित नौ लीलाओं में आनंद ही आनंद है। कौन किसको आनंद देता है, कौन किससे आनंद देता है, ये भेद ही खत्म है। पूर्ण दुखी वह है जिसे संसार प्रसन्नता नहीं दे पाता। पूर्ण दुखी होते ही दुखहारी हरी दुख हर लेते हैं। अतः पूर्ण दुख आनंद के लिए परम आवश्यक है। दुख मिटाने में शरीर तथा संसार असमर्थ है। अरे दुनिया के दुखियों, अब देर मत करो, व्याकुल हृदय से आनंद धन भगवान को बुलाओ, वे अवश्य आएंगे आएंगे आएंगे। सर्व अवस्थाओं से अतीत होने पर ही सतत जागृति हो सकती है। सतत जागृति होने पर ही अमरत्व का अनुभव हो सकता है। अमरत्व का अनुभव होने पर ही प्रेम पात्र के वियोग का भय मिट सकता है। सब प्रकार की आशा तथा भय मिट जाने पर पवित्र प्रेम उत्पन्न होता है। पवित्र प्रेम स्वयं प्रीतम से अभिन्न कर सब प्रकार से अभय कर देता है। दुख पाप का फल है, यह उनकी बात है जो सुख को जीवन मानते हैं। मानव सेवा संघ कहता है कि सुख दुख औषधि है, विधान से मिली है, उसके सेवन से रोग और प्रमाद दोनों का नाश होता है, फिर साधक परम विश्राम पाता है। दुख कोई देता नहीं, बल्कि दुखी से स्वयं दूसरों को दुख होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वयं जलकर दूसरों को जलाती है, दुखी का दुख उसी समय तक जीवित है कि जब तक अभागा दुखी दुख को संसार की सहायता से मिटाना चाहता है। संसार से निराश होते ही दुखहारी हरि दुख को स्वयं हर लेते हैं, यह अनुभव सिद्ध सकते हैं। इंद्रिय दृष्टि से अनित्य में सत्यता का भास होता है, बुद्धि दृष्टि से अनित्य का दर्शन होता है, विवेक दृष्टि नित्य अनित्य का विभाजन करती है, अंतर्दृष्टि नित्य में प्रवेश करा देती है, प्रीत दृष्टि सर्वत्र प्रियतम का दर्शन कराती है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अमर हूँ, यह वेद वाणी सुनी हुई है। मैं यह नहीं हूँ, यह जीवन का अनुभव है। जीवन के अनुभव को पहले मानो, तब वेद वाणी सिद्ध होगी। जीवन के अनुभव को माने बिना वेद वाणी अपने लिए अनुभव, दूसरों के काम आए बिना करने का राग मिटेगा नहीं, राग रहित हुए बिना योगवित होना संभव नहीं, अचाह हुए बिना शांति मिलेगी नहीं, प्रभु को अपना माने बिना प्रेम की अभिव्यक्ति होगी नहीं, प्रेम रस के बिना
अभाव का अभाव संभव नहीं। दूसरों से काम आना सेवा है, अचाह होना त्याग है, प्रभु को अपना मानना प्रेम है, सेवा त्याग प्रेम में ही जीवन की पूर्णता है।